समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओ, आधे घंटे इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं अतहर सईद और मेरे साथी मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो अतहर, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Athar Saeed. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Campaigning for the second phase of Lok Sabha elections touches peak before coming to end this evening.
प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं।
Sixth edition of the International Conference on Disaster Resilient Infrastructure begins in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi stresses on investing in resilient infrastructure for a better tomorrow.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने में वन संरक्षण की भूमिका पर जोर दिया।
US Senate approves bill banning TikTok.
और IPL क्रिकेट में आज नई दिल्ली में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से।
And now, Athar, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level.
Bilkul.
And today we will talk about Panchayati Raj Day. Well, the Minister of Panchayati Raj in India observes April 24th as the National Panchayati Raj Day each year. The 73rd Amendment Act of 1992 was enacted on this day, and in that honour, this day is celebrated every year in India. India's three-tiered administrative structure is known as the Panchayati Raj system. It is a decentralized formation of governance where local bodies or gram panchayats are empowered through self-governance and independence in decision-making, and the celebration of the National Panchayati Raj Day highlights the importance of decentralized governance in promoting inclusive and sustainable development. And Athar, by celebrating this day, India reaffirms its commitment to promoting grassroots democracy and empowering people in rural areas.
अभिषेक, बचपन में हम देखते थे कि कोई भी गांव में मसला अटकता था, कोई विषय पर चर्चा करनी होती थी, कोई समस्या हुआ करती थी गांव की, तो कहा जाता था कि भाई पंचों के पास चलो। पंच में यानी वो महत्वपूर्ण और जिम्मेदार पांच लोग जो आपकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं, आपको रास्ता भी दिखा सकते हैं।
जो
गांव के
विलेज काउंसिल,
जी विलेज काउंसिल जिसको पंचायत कहते हैं, तो वो गांव की उन तमाम प्रक्रियाओं को देखती थी जो कि जिससे गांव का विकास हो सके। अभिषेक, भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस उस ऐतिहासिक दिन की याद में मनाया जाता है जब 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। इस संशोधन ने भारत में गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थानों यानी PRI के साथ स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू की थी।
Yes, absolutely, Athar. And, you know, like let's talk about three ways in which the Panchayati Raj is important.
Ji.
Well, firstly, Panchayati Raj strengthens the foundation of Indian democracy.
Mm-hmm.
Secondly, it provides representation to the weaker sections of the society, namely the scheduled tribes, scheduled castes, and other backward classes, and most importantly, women. And lastly, the Gram Panchayat maintains water sources, village wells, tanks and pumps, street lighting and drainage system. So this then, Athar, are three ways when why Panchayati Raj is an important event today. And an effective local administration is required for India to achieve inclusive growth and address issues like climate change and rural to urban migration. The importance of Panchayati Raj has increased recently, and Panchayati Raj institutions are strategically positioned to guarantee fair and feasible development at the local level and answer to local demands.
बिल्कुल अभिषेक, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का इतिहास भारत में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें बड़ी आवाज देने के प्रयासों में निहित है। पंचायती राज प्रणाली भारत में पारंपरिक ग्राम परिषद प्रणाली का एक लंबा इतिहास है अभिषेक, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसे कि मैंने भी जिक्र किया, आपने बचपन की बात आपको बताई कि पंच परमेश्वर जो है किसी भी समस्या का समाधान किया करते थे गांव का। हालांकि 1992 में संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम पारित होने के साथ पंचायतों को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दी गई, और अभिषेक संशोधन का उद्देश्य पंचायतों को अधिक अधिकार देना और उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अधिक संसाधन प्रदान करना, और इसने पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने और स्वशासन संस्थानों के रूप में उनकी संवैधानिक मान्यता के रूप में एक रूपरेखा भी स्थापित की। संशोधन के पारित होने के बाद से पंचायती राज प्रणाली ने भारत में ग्रामीण समुदायों के विकास और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संशोधन पारित होने के उपलक्ष्य में और ग्रामीण विकास और शासन में पंचायतों के योगदान को मान्यता देने के लिए ही हर साल आज ही के दिन यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। विषय
यस, इन अदर वर्ड्स अर्थात द पंचायती राज सिस्टम हैज इट्स रूट्स इन एंशिएंट इंडिया वेयर द विलेज काउंसिल नोन एज द पंचायत वाज द प्राइमरी गवर्निंग बॉडी एंड इट वाजंट अंटिल 1993 दैट द पंचायती राज सिस्टम वाज ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। And in 2024, India's National Panchayati Raj Day will not have a specific theme this year, Athar. Mm-hmm. However, there will be an event to honor the nation's best panchayats with awards. And these awards are a means of recognizing these panchayats for their outstanding efforts to improve the lives of rural households. And the Minister of Panchayati Raj is organizing a national colloquium on the governance of the grassroots after 3 decades of the 73rd Constitutional Amendment on 24th April 2024 at Vigyan Bhavan, New Delhi, in observance of the National Panchayati Raj Day. Secretary Minister of Panchayati Raj Sri Vivek Bhardwaj and Secretary Department of Rural Development Sri Shailesh Kumar Singh will inaugurate the national colloquium in the presence of Additional Secretary Minister of Panchayati Raj Dr. Chandrasekhar Kumar and other senior officials.
और अभिषेक, अगर महत्व की बात करें आज के दिन की, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का महत्व भारत में ग्रामीण समुदायों के विकास और शासन में पंचायतों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की मान्यता में निहित है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवाज देकर उनकी जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए संसाधन प्रदान करके सशक्त बनाती है। ये दिन अभिषेक पंचायती सदस्यों की कड़ी मेहनत और समर्पण को महत्व देने का है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते हैं, और ये सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण समुदायों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस दिन की अगर और चर्चा करें तो ये दिन शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण आजीविका निर्माण जैसे विभिन्न पहलुओं में पंचायती राज संस्थानों यानी पीआरआई की सफलता की कहानियों को बयान करता है। अभिषेक, ये दिन पंचायती राज को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की याद दिलाता है।
यस अथर, यू टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायती राज इन रिसेंट टाइम्स, लेट मी ऐड टू इट। पंचायती राज इम्पोर्टेंस हैज ग्रोन एज इफेक्टिव लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर इंडिया टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ एंड एड्रेस प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन। एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इन अ गुड पोजीशन टू एंश्योर फेयर and sustainable development at the local level and respond to local demands.
और इसकी खूबी यह है अभिषेक, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने का भी काम यह करता है। ये दिन पंचायती राज संस्थानों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर स्थानीय शासन में सक्रिय नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। पंचायती राज ग्रामीणों को उनकी चिंताओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को सीधे उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास क्या कुछ विशेष है। अभिषेक,
द कोची वाटर मेट्रो, द फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस इन द कंट्री, इज पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द सिटी ऑफ कोची इन केरला। And the service is a major crowd puller and has become a big hit with both tourists and locals alike. And the environment-friendly, sustainable public transport service is a model worthy of emulation in different parts of the country. And a Kochi correspondent has filed this report.
Launched about a year ago, the Kochi Water Metro has become an important part of the tourist itinerary in the city. Visitors make it a point to take a ride on the ferry to enjoy the scenic beauty of the Ernakulam backwaters in its air-conditioned comfort. The double-hull hybrid boats with the capacity to carry 100 passengers run mainly on electricity. The boat jetties of the system are also well-maintained. The Kochi Metro Rail Limited is the implementing agency of the project. Initially, the service began between High Court Jetty and Waipin Island and another between Waitila Hub and Kakanad. Later, Borkati Island, South Chittoor, Elur and Cheranallur routes were also added. A new service on the High Court Fort Kochi route began last Sunday. The Kochi Water Metro is a big hit and has so far carried over 19,49,450 passengers within a year of commencing its operations. Among the major issues confronting the service in certain routes include lesser frequency of services and lack of last-mile connectivity to the boat jetties. Both are being addressed by the Water Metro authorities, and the situation is expected to improve when more boats are delivered by the Cochin Shipyard. The increasing inquiries from different parts of the country received by the Water Metro for setting up similar service stands testimony to the success story of the Water Metro. Being implemented at a cost of 1,137 crore rupees, the project will have 38 terminals and 78 electric boats connecting 10 islands to the region when complete. Rajmohan, Akashwani News, Kochi.
Kochi ke baad ab rukh karenge Ranchi ka Abhishek. झारखंड में चार चरणों में होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य में मतदान 13, 20 और 25 मई तथा 1 जून को होने हैं और जानकारी ले लेते हैं अपनी रांची संवाददाता पूनम करकेटा से।
मतदाताओं के बीच मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन कई तरह के कदम उठा रहे हैं। रामगढ़ जिले में एक अनूठी पहल की जा रही है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को ओपीडी पर्ची में रामगढ़ करेगा वोट 20 मई अंकित कर पर्ची दी जा रही है, जिससे लोगों को यह दिन अच्छी तरह याद रहे।
सभी लोग अपना मतदान जो 18 साल से ऊपर के हैं अपना मतदान अवश्य करें, वोट अवश्य डालें। हम लोग कई तरह से प्रयास कर रहे हैं कि ये मतदान की संख्या और अधिक बढ़े और कोई भी वोटर छूटे नहीं। हम लोग जितने भी हॉस्पिटल हैं, ओपीडी की पर्ची है या स्लिप इशू होता है, उसमें उस तिथि के बारे में या मतदान का संदेश उसमें हम लोग डलवा रहे हैं। उस भी लोगों से शपथ दिलवाई जा रही है कि वो अपना मतदान अवश्य करें। हम लोगों ने एक छोटा सा स्टिकर भी बनाया हुआ जो सभी के फोन में हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि फोन हमेशा लोगों के पास रहता है, इसमें जो डेट लिखा हुआ है लोगों को याद दिलाता रहे।
साहिबगंज जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि पिछली बार जिन बूथों में 50% से कम मतदान हुए थे उनमें बूथ एम्बेसडर बनाकर 70% से अधिक वोट कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
हमारे जिले में ऐसे 18 बूथ हैं जिनमें 50% से कम मतदान हुआ था। हर एक बूथ के लिए एक बूथ एम्बेसडर बनाया है, जिसका दायित्व होगा कि वो घर घर जाकर के योग्य मतदाता है उससे बात करके उनको मतदान केंद्र तक लाने के लिए प्रेरित करेगा।
गुमला जिले में 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने भारत स्काउट और गाइड के बच्चों के साथ जागरूकता रैली निकाली।
इस वर्ष हमारा एम है कि 80% से ऊपर मतदान हो और सभी लोग नैतिक रूप से बिना किसी प्रलोभन के मतदान करें।
आशा है कि आने वाले चुनाव में स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। परिक्रमा के लिए रांची से पूनम करकेटा।
Anantagiri Hills is one of the top tourist places to visit. It's also among the top hill station in Andhra Pradesh, apart from being popular. Visakhapatnam, a city referred to by many as the jewel of East Coast, is home to many beautiful tourist destinations in the state of Andhra Pradesh. Situated on the large green valleys of Eastern Ghats, the city has beautiful hills and ranges. Let's hear more from our correspondent Padmaja.
Anantagiri Hills is one of the beautiful hill ranges that adds on to the tourist attraction of Visakhapatnam. Located at the top of Elysian Tirumala Hills is Anantagiri, approximately 17 kilometers from Arku Valley, which is 112 kilometers from Visakhapatnam. The Eastern Ghats, which has numerous hill ranges, and Anantagiri is one amongst of them, located at a distance of 40 kilometers from Visakhapatnam. The serene beauty and scenery appeals to all, including nature lovers, tourists and pilgrims. The serene weather in summer season is a paradise to the tourists. The Anandagiri Hills are also famous for the coffee lovers with beautiful coffee plantations. The beautiful meadows of wildflowers and apple orchards in full bloom, rushing streams cascading down the mountain and the snow-capped Himalayas, and the exquisite views of sunrise are the explicit visual treat to the tourists. The sunset at Anandagiri Hills, wrapped by many mango groves and orchards, is known for its friendly smell. The major attraction also serves home to the Bhavanasi Lake and hence is referred as the Badrinath of the South. Anandagiri Hills makes the trip between Vishakhapatnam and Arakku more happening with its cool sceneries spread across with the coffee and pepper plantations. The tourists can enjoy the winter climate and flowering plants along the way. This is Padmaja signing off for Palkrama.
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile giving details of number of faces, date of polling, number of seats and other relevant facts by a correspondent. First, let's go over to Karnataka.
Mysuru is the cultural capital of Karnataka, known for its palaces and arcades. It also has a vibrant electoral history. The Mysuru Lok Sabha constituency consists of 6 assembly segments in Mysuru district and 2 from Kodagu district. Out of these 8 assembly segments, 2 in Kodagu and 3 in Mysuru are held by Congress MLAs, 2 by JDS and 1 by BJP. There are 18 candidates in fray from here. Apart from Congress and BJP candidates, there are 8 from registered unrecognized parties and 8 others are independents. There are over 20,72,000 voters in the constituency. Pratap Simha from BJP represented the seat in 2014, securing 43.46% of the votes, and in 2019, securing 52.27% votes. However, this time Pratap Simha has been replaced by Yaduvir Krishnadatta Chamaraja Wadiyar, the scion of the Wadiyar royal family that ruled Mysore earlier. Yaduvir is taking on the Congress candidate Lakshman M, who is an engineer turned politician and was a spokesperson from the region. JDS is in coalition with BJP and has not fielded its candidates from the constituency. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
26 अप्रैल को केरल में होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य की त्रिशूर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है. सभी दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. सुनते हैं हमारे कोच्चि संवाददाता की ये रिपोर्ट.
कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों ने पिछले चुनावों में त्रिशूर से कई बार जीत हासिल की है, लेकिन इस बार भाजपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है. भाजपा ने सुरेश गोपी को मैदान में उतारा है, जो संसदीय चुनाव के लिए इस निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि वे 2019 में दौड़ में तीसरे स्थान पर थे. सुरेश गोपी ने कुल मतदान का 28.19% वोट हासिल किया था. यूडीएफ ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण के बेटे के मुरलीधरन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एलडीएफ ने सीपीआई के वीएस सुनील कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है. मुरलीधरन जो पिछली बार वडकारा से जीते थे, उनकी बहन पद्मजा वेणुगोपाल के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने उन्हें त्रिशूर से उम्मीदवार बनाया है. तीनों दलों के उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और व्यापक स्तर पर जनसंपर्क कर रहे हैं. कोच्चि से राजमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
April 24th is the death anniversary of the revolutionary freedom fighter Ardhindu Dastidar.
In his early teens, Ardhindu left his family and became an active member of the Revolutionary Party of Chittagong under the able leadership of Master Das Surya Sen. Just a few weeks before the storming of the armory at Chittagong, he got severely burned due to an accident in manufacturing picric acid powder meant for high explosive bombs.
He had not fully recovered from his injuries when he joined the party that carried out the Chittagong armory raid on the 18th of April 1930. When the revolutionaries fought the British in Jalalabad Hills on the 22nd of April, he received a deadly wound in his abdomen which rendered him unconscious.
On the next day of the fight, that is, on the 23rd of April, a small group of villagers climbed the top of the hill and found Ardhendu Dastidar in a precarious condition. He was taken to the Chittagong General Hospital.
He refused to tell how he received the wounds. He was as stern and unbending as a rock. Ardhendu struggled with death a few hours more, but finally succumbed to his injuries on the 24th of April, 1930.
Chume zahar charan ke niche mai umanga mein gaun, o taan taan phan bhyal ki tujh par mai baansuri bajaun. Yah baansuri baji maya ke mukulitaya kunchan mein, yah baansuri baji abinasi ke sambesh gahan mein.
24th April is also the death anniversary of Rashtra Kavi Ramdhari Singh Dinkar. Ramdhari Singh was born in Begusarai district of Bihar. When Dinkar enrolled at Patna College in 1929, he became involved with the Indian Freedom Movement.
Dinkar was a part of demonstrations against the Simon Commission in Patna. Upon hearing the news of the death of Lala Lajpat Rai due to lathi charge by the British, the youthful mind of Dinkar became increasingly radical. This was also the time when he began composing poems filled with patriotism under the pen name Dinkar.
Astitvon ke anastitv mein, maha shanti ke tal mein, yah baansuri baji shunyasan ki samadhi nischal mein, o kampahin tere samudra mein jeevan lehar uthaun, o taan taan phan vyal ki tujh par main baansuri bajaun.
Dinkar wrote the poem Vijay Sandesh in honor of the Sardar Patel led Bardoli Satyagraha.
To escape the wrath of the government, Dinkar's poems were published for some time under the pseudonym Amitabh. On the 14th of September 1928, his poem on the martyrdom of Jatin Das was published.
Akshay bat par baji bansuri gagan magan lehraya, o dal par vidhi ko liye jaladhi mein naabhi kamal ug aaya, o janmi nav chetana सिहरने लगे तत्व चल दल से ओ स्वर काले अवलंब भूमि निकली प्लावन के जल से अपने आर्द्र बसन की वसुधा को फिर याद दिलाऊं ओ तान तान फन भ्याल की तुझ पर मैं बांसुरी.
Dinkar initially supported the revolutionary movement during the Indian independence struggle, but later became a Gandhian. Over time, Dinkar became a popular writer whose works resonated with the readers and the freedom struggle. In 1935, a compilation of his poems titled Renuka was published and a copy of it was presented to Mahatma Gandhi.
O neetikar, tum jhooth nahi kehte hoge, bekar magar paglon ko gyan sikhana hai. मरने का होगा खौफ मौत की छाती में जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है.
Dinkar's works were not just nationalistic, they were also deeply insightful. In 1952, Ramdhari Singh Dinkar was nominated as a member of Rajya Sabha.
Dinkar won the Sahitya Academy Award in 1959. He was also awarded the Padma Bhushan in 1959. The great poet left for heavenly abode on the 24th of April, 1974. We salute the great nationalist.
In business news today, benchmark indices ended in the green for the fourth consecutive session today, driven by gains in select heavyweights amid broadly positive global cues. The BSE Sensex rose 114.49 points, or 0.16%, to settle at 73,853, while the Nifty 50 jumped 34.40 points, or 0.15%, to close at 22,402. In the forex market, the rupee ended marginally lower at 83 rupees and 32 paise against the US dollar.
और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं क्रिकेट की हलचल. आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। और अभिषेक, इस क्रम में हम सबसे पहले किसको याद कर रहे हैं?
यस, वी स्टार्ट ऑफ विद जामिनी रॉय, हु पास्ड ऑन दिस डे 1972। ही वाज एन इंडियन पेंटर। ही वाज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अवार्ड ऑफ पद्म भूषण इन 1954। ही रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्यूपिल्स ऑफ अवींद्रनाथ टैगोर, अनदर प्रेस्ड इंडियन आर्टिस्ट एंड इंस्ट्रक्टर। Roy, highly simplified, flattened out style and reminiscent of European modern art, was influenced by the bazaar paintings sold at Indian temples and talismans.
आज ही पुण्यतिथि है दीनानाथ मंगेशकर की। दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता, गायक, शास्त्रीय संगीतज्ञ और नाट्य संगीतकार थे। वे प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर, आशा भोंसले, मीणा खड़ीकर, उषा मंगेशकर और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर के पिता थे। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 अप्रैल को यानी मास्टर दीनानाथ के स्मृति दिवस पर यानी आज के दिन आयोजित किए जाने की परंपरा रही है। अभिषेक,
सचिन तेंदुलकर वॉज बॉर्न ऑन दिस डे 1973। ही इज एन इंडियन फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हु कैप्टन द इंडियन नेशनल टीम। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल क्रिकेटर्स इन क्रिकेट हिस्ट्री। हेल्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोलिफिक बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। He is an all-time highest run scorer in both ODI and Test cricket with over 18,000 runs and 15,000 runs respectively. He also holds the record for receiving the most player of the match awards in international cricket. And Athar Tendulkar was a member of parliament Rajya Sabha by nomination from 2012 to 2018.
खास बात यह है कि सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के लिए भी चुना गया और वो इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं अभिषेक। और उनके सामने तो कीर्तिमान भी कहीं न कहीं बोने हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले भी एकमात्र क्रिकेटर हैं। सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है यानी 463 मैच उन्होंने खेले हैं। वनडे मुकाबले में सबसे ज्यादा रन यानी 18,426 रन बनाने का कीर्तिमान भी उनके नाम है और एक दिवसीय मुकाबले में सबसे ज्यादा शतक यानी 49 शतक भी उन्हीं के नाम है। और एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास की अगर बात करें तो दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ही रहे हैं। कीर्तिमान तो बहुत सारे हैं, समय कम पड़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं।
यस, सिंगर नलरू पुतास्वामिया मुथुराज वॉज बॉर्न ऑन दिस डे इन 1929, बेटर नोन बाय स्टेज नेम डॉक्टर राजकुमार। ही वॉज एन इंडियन एक्टर एंड सिंगर हु वर्क्ड इन कनाडा सिनेमा। Regarded as one of the greatest and most versatile actors in the history of Indian cinema, he is considered a cultural icon. He holds a Matini idol status in the Kannada diaspora, among whom he was popularly called as Nata, Sarvabhuma, Emperor of Actors, Bangaradda, Manushya, Man of Gold, Varanata, Gifted Actor, Gana Gandharv, Celestial Singer, Rasikara Raja, King of Connoisseurs, Kannada Kantirava, and Rajana Anavru, Elder Brother Raj. He was honored with the Padma Bhushan in 1983 and the Dada Saab Phalke Award in 1995. And he is also Athar, the only lead actor to win the National Award for Playback Singing.
Mm-hmm.
And his 39 movies have been made 63 times in 9 languages by 34 actors, making him the first actor whose movies were remade more than 50 times and whose movies were remade in 9 languages. And he was the first actor in India to enact a full-fledged role based on James Bond.
और आज ही जन्मदिवस है मैक मोहन का, जो कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। वो मुख्य रूप से खलनायक के किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं। मैक मोहन प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री रवीना टंडन के मामा थे। मैक मोहन का असली नाम की अगर बात करें तो मोहन माखी जानी उनका नाम था। वो बचपन से अभिनेता नहीं बल्कि क्रिकेटर बनना चाहते थे अभिषेक। और उनकी खास फिल्मों की बात करें तो शोले को कौन नहीं जानता, और उनका जो डायलॉग है, उनके जो डायलॉग हैं, उन्होंने उनको बहुत शोहरत दी है। पहले संवाद सुन लेते हैं।
अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
पूरे 50,000।
सुना? पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
अमर फिल्म का अमर डायलॉग्स में से एक कहा जा सकता है। साल 1964 में मैक मोहन ने फिल्म हकीकत से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 46 साल के करियर में उन्होंने करीब 175 फिल्मों में काम किया अभिषेक, लेकिन उनका जो किरदार सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो था फिल्म शोले का सांभा, जिसका संवाद अभी हमने सुना।
सो विद दैट इट्स टाइम टू वाइंड अप दिस एडिशन ऑफ परिक्रमा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Till the next time, this is Athar Saeed and me, Abhishek Mukhopadhyay, signing off. Bye and
Namaskar.